Market Hunter. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that you do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444 and 2342-1050. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Nikhil Kumar.
नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्र कार्यक्रम में फिर हाजिर हैं। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम शेयर बाजार, कारोबार और व्यापार जगत से जुड़े आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप हमें इन नंबर पर फोन कर सकते हैं 2331-4444। हमारा दूसरा नंबर है 2342-1050 और दिल्ली के बाहर के जो श्रोता हमें कॉल करें वो एसटीडी कोड 011 जरूर डायल करें। आपके सवालों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा जी। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार, धन्यवाद।
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है लालिमा।
Thank you, Nikhil. Yes, the headlines first. Stock markets close higher in volatile trade ahead of key Fed policy meeting. Sensex ends 105 points higher, Nifty above 22,050. Three-day startup Mahakumbh begins in New Delhi, aims to connect startups with inventors including venture capitalists, investors and potential corporate partners. And oil prices rise as global geopolitical tensions intensify.
अमरीकी फेड रिजर्व नीतिगत बैठक से पहले उतार चढ़ाव के बीच शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 105 अंक का उछाल और निफ्टी 22,050 से ऊपर पहुंचा। तीन दिन का स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली में शुरू। स्टार्टअप्स को पूंजीपतियों, निवेशकों और व्यवसायियों के साथ जोड़ने का लक्ष्य और भू राजनीतिक तनाव बढ़ने से तेल के दामों में तेजी। और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख घरेलू सूचकांक आज उतार चढ़ाव से भरे कारोबारी माहौल में ऊंचे स्तर पर बंद हुए। निवेशकों ने सतर्कता बरतते हुए इस सप्ताह अमरीकी ब्याज दर के फैसले और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच दूरी बनाए रखना पसंद किया। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.14% की बढ़त से 105 अंक चढ़कर 72,748 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.15% के उछाल से 32 अंक ऊपर आकर 22,056 पर पहुंच गया। विस्तृत बाजार की बात करें तो बीएसई मेट कैप सूचकांक आज 0.04% के लाभ के साथ बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.07% की गिरावट दर्ज हुई।
Another stocks in detail. Benchmark equity indices ended higher in a volatile trade today as cautious investors prefer to remain on the sidelines ahead of the US Fed interest rate decision this week and rising crude oil prices. The 30 share Sensex rose 105 points or 0.14% to close at 72,748 and NSE Nifty jumped 32 points or 0.15% to finish at 22,056. Among Sensex firms, Tata Steel jumped over 5%, Mahindra & Mahindra, JSW Steel and Tata Motors were the other's biggest gainers. On the other hand, Infosys, Tata Consultancy Services and Titan were among the laggards. In the broader market, the BSE Midcap Index rose 0.04%, while the Small Cap Index slipped by 0.07%. In the sectoral indices at the BSE, the metal sector surged 2.90%, auto sector rose 1.10% and commodities index jumped 0.90%. On the other hand, the information technology sector plunged 1.5%, tech index declined 1.20% and consumer durable sector fell 0.5%. So, Shishir, as we wait for the calls to trickle in, what do you have to say about today's Sensex report, we closed at 72,748.
So almost it was a flat trading today. Mm-hmm. And the reason is obvious. Federal Reserve is meeting tomorrow and day after. That's Tuesday and Wednesday. And the most important thing is that what kind of currency it is going to have. Because the Federal Reserve is saying that until unless we have inflation rate of 2% or below 2%, we are not going to cut the rate. And at this moment, the rate of inflation is US is 3.2%. So we are not expecting any rate cut, but the commentary would be very, really, really important. There are two more important meetings this week, that one by the Bank of Japan and another by Bank of England. And both have to take decisions on the rate cuts. So the stock market, not just in India, but all over the world, they are going to watch this. These three banks, what kind of commentary or what kind of stance they are going to have, and accordingly they will behave. So, an Indian stock market is not a kind of, we can say that it is separated from the global market. It is part of the global market. So that is why we saw almost a flat trading.
Mm-hmm.
At the same time, there are some kind of nervousnesses in terms of the crude prices, because the crude prices, we have seen it has gone up because of the geopolitical situation, and the gold prices are going up.
Yeah.
So that is giving a kind of signal that geopolitical uncertainty is going to stay for some more time. So these are the events which are going to take place, which are going to impact the behavior in the market.
Mm-hmm. All right. And what do you have to say about the stocks just now? As you said, the markets have been more or less flat. As they say, no news is good news. Some sectors going up and some going down. You have the whole record with you.
Yeah, yeah.
Uh-huh.
See, if you talk about the tech sector, at this moment, the most important news about the sectors are, most important is the technology company shares. And the tech shares are not going to do well at this moment. That is one problem which we are facing. But the good thing is that some of the financial sector companies are giving some better return. And there we will see some action there. Mm-hmm. PSU shares, we saw some kind of selling last week. This time they are going to rise. So, and at the same time, FMCG shares are also going to have a positive upturn. So these are some of the sectors which I believe that will shape the movement in the market.
Right.
और हमारे पहले श्रोता जयपुर से जितेंद्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर. हेलो जितेंद्र.
हाँ जी, हाँ नमस्कार, धन्यवाद
जी. नमस्कार, आपका प्रश्न
जी. हाँ सिसिर जी, मेरी लास्ट आपसे बात हुई थी कि फाइनेंस कंपनी में कौन कौन सा सेक्टर आता है, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया था कि जो भी था एनबीएफसी बैंक और इस तरह का, उसमें आपने एक फिनटेक का नाम लिया था, तो फिनटेक का आपसे डिफिनेशन चाहते कि फिनटेक किसको कहते हैं, नंबर वन सवाल है. और दूसरा सर एक ऐसा मतलब सवाल, खैर टेक्निकली चीज हम पूछ रहे हैं कि जैसे सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड होता है सरकार का, आरबीआई से बॉन्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड एक कैसा कागज जैसा होता है या कैसे फंक्शन खाली करता है, इतना ही बताइएगा इसका फंक्शन कैसे होता है.
वेरी बेसिक क्वेश्चन
जितेंद्र जी. पहला जो आपने सवाल पूछा है फिनटेक को लेकर के, देखिए इसमें दो शब्द है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऐसी वित्तीय कंपनी जो कि तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को सेवाएं देती है. जैसे एक पारंपरिक जो फाइनेंशियल कंपनी होती है उनमें दो तरह का स्वरूप होता है. जैसे आपका बैंक है, वहां पे ब्रिक एंड मोर्टार यानी कि ईंट और पत्थर से बनी हुई इमारत भी है और वो आपको डिजिटल जो है वो सेवाएं भी देते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए. दूसरी जो फिनटेक कंपनीज होती हैं वो मोस्टली टेक्नोलॉजी का यूज करके, तकनीक का इस्तेमाल करके आपके लिए वो सुविधाएं देती है, और वहां पर ब्रिक एंड मोर्टार का सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा नहीं चलता है. अभी आपने देखा होगा कि हाल में एक फिनटेक कंपनी जो है वो किसी वजह से संकट में रही है, और वो नाम चूंकि हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो कि अलग अलग सुविधाएं देती हैं. दूसरा जो आपका प्रश्न है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और इलेक्टोरल बॉन्ड का, देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक आम निवेशक के लिए है जो सोने में यानी कि कागजी सोने में निवेश करता है. इलेक्टोरल बॉन्ड जो 2018 में शुरू की गई थी उसका मकसद यह था कि जो आप चंदा देते हैं वो बॉन्ड खरीद करके थे, और वो 15 दिन के भीतर जो है वो इनकैश हो जाता था, अगर नहीं है तो पीएम केयर फंड में वो चला जाता था. तो ये दोनों बॉन्ड का आपस में कोई संबंध नहीं है, और आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो बिल्कुल आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है और आपके पास एक कागज में रसीद आती है. इलेक्टोरल बॉन्ड में भी आपको कागज में रसीद मिलता है, बस इतनी ही समानता है.
friends. We're now joined by Mr. N.R. Prasad calling us all the way from Bengaluru. Yes, Mr. Prasad, please ask a question.
Hi, good evening. This is N.R. Prasad from Bangalore. Mr. Sinha, there are two questions. Last week, as you know, everyone that more than 2,000 points fell down and badly hitting the mid-cap. 13.47 lakh crore eroded for the investor. So any specific reason why only mid-cap got hit? On the contrary, many of the IT sector who were in the large cap rallied the most. So any specific reason for this 13.47 lakh eroding? My second question is, PM announced that startup India is going to be in a third position very soon with 1.25 lakh startups coming up. I just want to know on which sector these startups are largely classified so that we can invest in those startups. Thanks.
Okay. Talking about the first question, which you talked about the mid-cap and the small-cap, if you can remember, SEBI chairperson, she talked about some kind of bubble among the mid-cap and the small-cap, and that was the reason why these two sectors saw a correction, I would say, and I mean very heavy fall during last week, and as you rightly mentioned about the figure. So that was the sole reason for that. And we have always maintained that in terms of the transparency, in terms of the disclosure, in terms of more and more liquidity, large caps are much better. That is why they are called large cap. And mid cap and small caps are risky. And that is what SEBI chairperson indicated about that. In fact, there was a clear, what you can say, tussle of the among the words. One is called the froth and the other one was the bubble. So these two words were being used. Somebody say, no, it's just as a small bubble, but bubble is bubble. Now, coming to the second part, which you talked about the startups. So, most of the if you talk about the 1 lakh startups, as of now, if I can remember the figure registered under DPIIT is almost around 1 lakh. And they are across the sector, not just in one specific sector. But fintechs are really very, very in the large number. Financial companies, financial technology companies are in large number. But if you see the delivery one, if you see the e-commerce one, if you see the food delivery apps, they are also in a large number. So it's across the sector. One specific sector will be difficult to say. But if you want to invest in startup, there are a number of options available. My advice would be to go for the fintech because they are having a good prospect, but the other sectors are also not lagging behind.
मुंबई से हमारे साथ कन्हैया जुड़े हैं फोन लाइन पर. हेलो कन्हैया जी.
हाँ नमस्ते सर.
नमस्ते, आपका सवाल क्या है?
सर मुंबई से बात कर रहा
जी. सवाल पूछ
सर, जो अभी कल परसों में जो फेड रिजर्व का मीटिंग है उसमें जो भी यूएस मार्केट पे इफेक्ट होगा वो इंडियन मार्केट पे इफेक्ट हो सकता है क्या?
बिल्कुल. देखिए कन्हैया जी, एक चीज आपको ये समझना होगा कि हमारा बाजार दुनिया के बाजार से अलग नहीं है. हम दुनिया के बाजार का ही एक हिस्सा है. और आप केवल फेडरल रिजर्व मत लीजिए. अभी हम लोग चर्चा भी इस बात पे कर रहे थे कि हमारी नजर बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड पे भी है, जिसकी बैठक इस सप्ताह होने वाली है. और इन तीनों का रुख क्या होगा वो भारतीय शेयर बाजार में भी दशा दिशा को तय करेगा. अभी के समय में इस बात का अनुमान है कि फेडरल रिजर्व जो है वो ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा. और जो पहले बात कही जा रही थी कि जून में वो कटौती कर सकता है, उसकी भी संभावना कम दिख रही है, क्योंकि वहां पर महंगाई की दर जो है वो 3.2% है, जबकि फेडरल रिजर्व चाहता है कि इसे 2% या उसके नीचे लाया जाए. अभी उसकी संभावना दिख नहीं रही है. तो जब ब्याज दरें वहां पे कम नहीं होंगी, उसका निश्चित तौर पर असर निवेशकों के व्यवहार पर पड़ेगा. और भारतीय शेयर बाजार भी उस बात पर निगाह जमाए बैठा है और वो ये भी जानना चाहता है कि वहां पे जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है जेरेमी पॉवेल, वो अपनी कमेंट्री में क्या कहते हैं. तो मुझे लगता है कि भारतीय शेयर बाजार अभी आप इस सप्ताह देखेंगे तो बुधवार तक जो स्थिति, कल और परसों तक जो स्थिति रहेगी वो थोड़ी सी एक फ्लैटनेस रहेगी, या कुछ हद तक आप निगेटिव बायस भी देख सकते हैं.
वेल मच एज वी से दैट आर नेशन फर्स्ट, द फैक्ट इज शिशिर, आई थिंक वी आर ऑल लिविंग इन अ सिम्बायोटिक वर्ल्ड वेयर ईच वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर.
एग्जैक्टली
राइट. वी आर नाउ जॉइंड बाय कुश कॉलिंग अस फ्रॉम रायगढ़. जी कुश, सवाल पूछे. जी
जी नमस्कार सर.
नमस्कार. जी
सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टॉक में जो डेट होता है जैसे रिकॉर्ड डेट, एक्सपायरी डेट, इसका क्या महत्व है सर स्टॉक पे? और दूसरा, अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाता है तो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक है उन पे क्या असर पड़ेगा?
पहला जो आपका सवाल है जो जिसको कहते हैं रिकॉर्ड डेट या एक्स डिविडेंड डेट, दरअसल क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, डिविडेंड का मतलब लाभांश है कि कंपनी जो लाभ कमा रही है उसका हिस्सा वो निवेशकों में कैसे बांटती है, उसकी दर होती है जो कि फेस वैल्यू पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे नहीं दिया जाता है। तो जो फेस वैल्यू पे आपका डिविडेंड है 5%, 10%, 20% जो भी दर हो सकती है, अब ये देखा जाता है कि एक निश्चित तारीख को कंपनी के रजिस्टर में कौन कौन निवेशक है जिनको डिविडेंड दिया जाना है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि अचानक जो है आप कहें कि हम डिविडेंड देंगे और उसके लिए कोई तारीख तय ना करें, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि किस तारीख को आप आधार बनाएंगे। तो ये रिकॉर्ड डेट का मतलब जो है ये है, और एक्स डिविडेंड जो डेट का मतलब है कि डिविडेंड देने के बाद किस तरह की स्थिति बनती है। तो ये आपका पहला जो प्रश्न था उसका जवाब है। दूसरा जहां तक सवाल है रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती का, देखिए अभी उसकी संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन जब कभी भी ब्याज दरों में कटौती होगी तो इसका एक मतलब यह भी है कि बैंकों के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसके ऊपर असर पड़ सकता है, तो ऐसे में वहां पर हम थोड़ी सी जो है वो बिकवाली देख सकते हैं।
और फिलहाल एक अगली खबर पर बढ़ते हैं हम। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए का स्तर 82.91 रूपये प्रति डॉलर पर दर्ज हुआ। दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 103.42 पर था। और झज्जर से इंद्रजीत जुड़े हैं फोन लाइन पर हमारे साथ में। हेलो
सर। हेलो, नमस्कार सभी को।
सवाल पूछिए।
मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम किसी स्टॉक में लंबे समय से बने हुए हैं और उसमें एक काफी ज्यादा अमाउंट हमारा लाइक 3 टाइम्स 4 टाइम्स हमने उसमें प्रॉफिट कर लिया है, प्रॉफिट हो चुका है, और अब हम उस स्टॉक को काफी अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसके मोमेंटम क्या रहता है, कब वो डाउन जाता है, कब अप जाता है, उसकी साइकिल को हम समझ गए, तो क्या जो कैपिटल गेन टैक्स होता है उसको कंसीडर ना करते हुए हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या उसमें लॉन्ग इन्वेस्टिंग ही करते रहें?
इंद्रजीत जी, एक बात आपको याद रखना है कि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंसेप्ट आया था तो उसके पहले यह भी कहा गया था कि 2017 के पहले की जो बात है, अगर मैं तारीख सही से याद कर पा रहा हूं, कि 2017 के पहले का जो भी मुनाफा है वो इसमें कैलकुलेशन में नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब रहा सवाल कि जो तारीख के बाद की बात करें तो उसमें यह भी कहा गया था कि 1 लाख रूपये के ऊपर का जो मुनाफा होगा उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। तो एक तरीका आपका यह हो सकता है कि आप जो है ना किस्तों में मुनाफा कमाएं, जैसे आप किस्तों में निवेश करते हैं उसी तरह से किस्तों में मुनाफा कमाएं, इससे आपको ज्यादा बेहतर हो सकता है, ज्यादा फायदा हो सकता है। और चूंकि आपने खुद कहा कि आप काफी लंबे समय से उसमें बने हुए हैं तो इसीलिए आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन है उसमें भी आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और एशियाई और यूरोपीय बाजार पर नजर डालें तो अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज ऊपर चढ़कर बंद हुए। केवल सिंगापुर का स्टेट्स टाइम सूचकांक मामूली रूप से नीचे आया। बाजार बंद होने के समय जापान के निक्केई सूचकांक में 2.60% की तेजी आई। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 1% का उछाल आया। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.70% की बढ़त देखी गई और हांगकांग के हिंगसेंग में 0.10% की वृद्धि हुई। यूरोपीय बाजारों की हम बात करें तो वैश्विक संकेतों से दिन के कारोबार में यहां तेजी का रुख देखा गया। जर्मनी का डेक्स 0.40% के लाभ में था। लंदन का फुटसी 100 0.20% और फ्रांस का कैक 0.10% की बढ़त पर थे।
फ्रेंड्स, वी आर नाउ जॉइंड बाय अतानु कॉलिंग अस फ्रॉम कोलकाता, वेरी रेगुलर कॉलर। जी अतानु जी, सवाल पूछे।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
गुड इवनिंग
सर। माय क्वेश्चन इज हू आर कोर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट न्यू जॉब, new employment in the market? And another second question is that the future of equity stock market, wondering. Thank you.
Can you repeat the first question, please, Atanu sir?
First question, sir. Namaskar, sir. No, sir, first question is that who are the core responsible? Who are, any government or any business, who are core responsible to create new jobs? New jobs.
Okay, okay.
And second ones are already I took.
Yeah.
Thank you.
Okay, thank you. So the first question about the creation of job, in fact, you cannot have just one person responsible for creating job. It's a combination of various stakeholders, whether we talk about the government, whether we talk about the private sector, whether we talk about the public sector. So everybody is responsible for creating job. It is not just the one person or the two person solely responsible for that. Now coming to the second question, His second question was about
उनका ये इक्विटी से रिलेटेड क्वेश्चन था
जो शेयर बाजार के भविष्य की बात है. शेयर बाजार के भविष्य की जो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट इक्विटी स्टॉक मार्केट लेट मी टेल यू आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन. देर आर सो मेनी इंसिडेंट्स आर हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इट इज नॉट जस्ट द डोमेस्टिक फैक्टर बट द ग्लोबल फैक्टर्स आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट दिस मोमेंट. द मार्केट इज वेरी मच concerned about the geopolitical situation and they are also looking for what kind of results we are going to have after the general poll. So the next 2.5 months will be critical for the market because not just the global factor but the domestic factors will also play a responsibility or also play a major role in the movement of the stock market.
All right, we now joined by Inderjeet calling from Jhajjar. Ji, aap ka bhi ek sawal hai, phir se puchhe.
Haan ji sir, mera ma'am पिछला जो क्वेश्चन था उसी में एक एडिशन है जो सर ने काफी अच्छे से मेरे को क्लियर किया कि मैं किस्तों में बुक करूं प्रॉफिट को. तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मैं 1 लाख से नीचे या प्रॉफिट बुक करूंगा उस पर शॉर्ट टर्म जो मेरी टैक्स लैब है जो मेरी जर्नल इनकम से है या सैलरी इनकम से है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा क्या उस पर.
इंद्रजीत जी, ये निर्भर करता है कि आपकी खरीद की तारीख क्या है. खरीद की तारीख के आधार पर ही आपके लिए जो है वो कैपिटल गेन टैक्स का कैलकुलेशन होगा. अगर आप मान लीजिए कि आज जैसे तारीख है 18 मार्च 2024 और आपने अगर 19 मार्च 2023 को आपने कोई शेयर खरीदा होगा और आज अगर उसको बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा और अगर 20 मार्च के बाद बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा जैसा. लेकिन आपने खुद ही कहा था कि आप बहुत लंबे समय से उसके ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर लॉन्ग टर्म का ही होगा. लेकिन आप दो तारीख आप याद रखिएगा. मैं फिर से आपको आगाह कर रहा हूं कि वो 1 लाख की सीमा को आपको ध्यान में रखना है और पिछला जो आपका मुनाफा हुआ है जब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की व्यवस्था लागू हुई थी उसके पहले जो आपका मुनाफा हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है.
Alright, we go on to the next story. The 3-day startup Mahakumbh began at Bharat Mandapam in New Delhi today. The startup event aims at connecting startups with a spectrum of inventors, including venture capitalists, investors and potential corporate partners. Speaking at the event, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT Secretary Rajesh Kumar Singh said, there are over 1 lakh startups in the country as of now, which were only 300 when the Startup India initiated was launched in 2016. He said, India is the third largest startup ecosystem in the world and there is a presence of startups in 670 districts of the country. He said over 50% of startups are from Tier 2 and Tier 3 cities. Speaking on the occasion, India's G20 Sherpa Amitabh Kant said that since the launch of Startup India scheme, remarkable growth has been witnessed in the number of startups in the country. He said the ecosystem has created over 1 million jobs in the last 8 years and over 10 million indirect jobs. He said India is the third largest startup ecosystem in the world and becoming number one is a big task. Our correspondent reports that sector-specific pavilions including artificial intelligence, B2B, Agri tech, deep tech, climate tech, gaming, e-sports, fintech have been set up at the Bharat Mandapam. More than 2,000 startups, 30,000 future entrepreneurs, 50,000 business visitors, thousands of investors and over 500 incubators and delegations from 10 countries are taking part in this mega event. So much for startups. Let's move on. Well, let's go on for...
एक छोटा सा स्पष्टीकरण इंद्रजीत जी का देना चाहेंगे.
जी जरूर जी.
उनका जो सवाल था कि तारीख की बात है, देखिए 2018-19 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी और उसमें कहा गया था कि 31 जनवरी 2018 तक जो आपको जो भी फायदा हुआ है वो आपके टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे में नहीं रहेगा और उसके बाद जो आप 1 लाख रुपए तक का टैक्स है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं है. 1 लाख के ऊपर जो है उस पर 10% की दर से है जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स का जो दर है 15% वो बना रहे.
राइट, परफेक्ट. और वी मूव ऑन टू मुंबई नाउ. समीर इज कनेक्टेड विद अस. जी समीर, सवाल पूछे.
सर मेरा सवाल ये है कि जब हमारे गवर्नमेंट में कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं जो कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट रहते हैं जो इनॉग्रेट किए जाते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर रहता है और उसकी जानकारी हमें कैसे मिल सकती है कि ये इतना इतना पैसा इस सेक्टर पे खर्च हुआ है ये कैसे जान सकते हैं हम. थैंक यू, धन्यवाद.
समीर जी देखिए ये जानकारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एक वेबसाइट है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिवीजन कहते हैं, वहां से आपको ये पता चल सकता है कि किस किस परियोजना में कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो पुराने परियोजनाओं का तो ब्यौरा दिया जाता है, इसके बाद जो नए प्रोजेक्ट्स की बात है, जब कभी भी बजट की घोषणा होती है तो बजट के दस्तावेज में भी इस बात का जिक्र होता है कि किस किस परियोजना को कितने पैसे मिलेंगे। तो ये दो स्रोत है जिसके जरिए आप पता कर सकते हैं।
Right, let's take a look at the oil prices now. Oil prices surged today, building upon last week's nearly 4% gains, driven by the perception of tightening supply, exacerbated by additional attacks on Russian energy infrastructure. In intraday trade, Brent crude was trading at $85.96 per barrel. West Texas intermediate crude price was at $81.71 per barrel when reports last came in. A brief comment on this, Shishir, before we
move on. हमारे साथ में रमेश जुड़े हुए दिल्ली से, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। हेलो रमेश जी, आपका सवाल क्या है, जल्दी पूछे।
जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बताया, अगर मान लीजिए हमें किसी लॉन्ग टर्म हमने होल्ड किया है एक शेयर डेढ़ साल तक, और अगर हमको मान लीजिए उसमें 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और अगर मैं आज सेल करता हूँ लेस देन 1 लाख का प्रॉफिट गेन करता हूँ, और फिर एक हफ्ते बाद बाकी प्रॉफिट गेन करता हूँ, तो क्या इससे वो लागू होगा क्या रूल?
रमेश जी, आपको ध्यान में रखना है कि अगर दोनों ट्रांजेक्शन एक ही कारोबारी साल में कर रहे हैं तो आपकी रकम तो 1 लाख के ऊपर हो जाएगी ना। ये ध्यान में रखिए कि आप कब बेच रहे हैं। तो अगर एक साथ आपने 10 दिन पहले 1 लाख किया और उसके बाद आप 50,000 कर रहे हैं, या 2 महीने के बाद करें, तो एक ही वित्तीय वर्ष हुआ ना, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपका कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा, वो पूरे साल की रकम है।
और श्रोताओं, ये आपको बता दें कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 68 रूपये चढ़कर 65,610 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, वहीं मई अनुबंध वाली चांदी 57 रूपये की बढ़त से 75,707 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी, और वैश्विक बाजारों में सोना नुकसान के साथ $2,161.30 प्रति ऑन्स पर था।
थैंक यू वेरी मच शिशिर फॉर ज्वाइनिंग अस एट मार्केट मंत्रा। थैंक यू वेरी मच। एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज इज अ रिमाइंडर, द हेडलाइंस, स्टॉक मार्केट्स क्लोज हायर इन वोलेटाइल trade ahead of key Fed policy meeting. Sensex ends 105 points higher, Nifty above 22,050. Three-day startup Mahakumbh begins in New Delhi, aims to connect startups with inventors, including venture capitalists, investors and potential corporate partners. And oil prices rise as global geopolitical tensions intensify. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra, friends. This is Lalima and Nikhil signing off. Namaskar.
Namaskar. Market Mantra.